सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिणेन म्यूं वेयण महाहियारं विविहियारं परूवेमु। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। एक 11वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना क्षेत्र विहानाणु उगद्दारम यानी वेदना क्षेत्र विधान अनुयोग द्वार चल रहा है। अभी हम पृष्ठ संख्या 23 पर आ गए। 23 ये उत्कृष्ट वेदना किसके होती है, ज्ञान आवरण की उत्कृष्ट वेदना किसके होती है, तो ये महामत्स्य उसकी बात थी जो स्वयं क्षेत्र की अपेक्षा, अभी इसमें सारा ही वर्णन क्षेत्र की अपेक्षा चलेगा। पहले हमने 10वीं पुस्तक में द्रव्य विधान देखा था, द्रव्य की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा देखा था, अब यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा चलेगा। तो ये महामत्स्य कहाँ होता है, कैसे जाता है, मानन्ति समुदात होते है, उसकी हमने बात की थी। अब यहाँ अनुत्कृष्ट वेदना की बात चल रही है। अनुत्कृष्ट किसके हो गए, तो उत्कृष्ट के नीचे जितने कुछ कुछ हो जा रहे वो सारे अनुत्कृष्ट हो गए। तो अनुत्कृष्टों में भी मैक्सिमम वाला कौन सा है, उसको हमने कल देखा था। हाँ, तो ये मुख में एक प्रदेश हीन वाला जो है, बाकी तो अवगाहना वगैरह सब उतनी ही लेनी, उतना ही वेदना समुद्घात लेना, उतने ही सातवें नरक में उत्पन्न होने वाला देख, बाकी तो कंडीशंस वही, मुख में एक प्रदेश कम, वो अनुत्कृष्ट कहलाएगा। फिर भी अनुत्कृष्टों में टॉप मोस्ट, वहां तक बात अपनी होगी। अब हम 23 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन नया पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। अब अनुत्कृष्टों में लगातार नंबर बताएंगे, अभी पहला अनुत्कृष्ट बताया, फिर दूसरे नंबर का अनुत्कृष्ट, तीसरे नंबर का अनुत्कृष्ट, इस तरह से। पुनः मुख प्रदेश में दो आकाश प्रदेशों से हीन महामत्स्य वेदना समुद्घात से समुद्घात को, ये समृद्ध हुआ है समुद्ध करना उसको, समुद्घात को प्राप्त होकर तीन विग्रह कांडों को करके, बाकी तो ऐसी कंडीशन रखी है, मानांतिक समुद्घात से सातवीं पृथ्वी को प्राप्त होता हुआ द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी होता है। अनुत्कृष्ट क्षेत्र में वो दो नंबर का हुआ। फिर तीन आकाश प्रदेशों से हीन मुख वाला महामत्स्य पूर्व विधि से ही मानांतिक समुद्घात से सातवीं पृथ्वी को प्राप्त होकर तृतीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी होता है। ये तो आसान है ना, उसमें क्या एक एक प्रदेश हम कटा रहे हैं। मुख में चार आकाश प्रदेशों से हीन महामत्स्य मानांतिक समुद्घात से साधिक 7.5 राजुमात्र आयाम से युक्त होता हुआ चतुर्थ अनुत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी होता है। ऐसे एक एक प्रदेश हीन करते करते इस प्रकार इस क्रम से महामत्स्य के मुख प्रदेशों को हीन करके, कहाँ तक हीन करते जाना, तो कहते संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण अनुत्कृष्ट क्षेत्र के विकल्पों को उत्पन्न कराना चाहिए। कितने विकल्प हो गए, हाँ संख्यात प्रतरांगुल, प्रतरांगुल में जितने प्रदेश है उसको संख्यात गुणा करना, उतने तो विकल्प हो गए अलग अलग। एक एक प्रदेश हीन कर रहे हैं हम, उतने प्रदेश हीन होने पर उतने अनुत्कृष्ट के विकल्प भी हो जाएंगे। हाँ अंगुल यानी असंख्यात होता है ना, अंगुल का प्रमाण कितना है, अंगुल कहाँ आता है, जितने वर्ग स्थान जाने पर पल्ले आता है उतने ही और वर्ग स्थान आगे पल्ले का वर्ग करते जाओ तो अंगुल आता है, अंगुल हाँ उसके असंख्यात विभाग में, तो अंगुल गुणा अंगुल प्रतरांगुल होगा और प्रतरांगुल को संख्यात गुणा करना, उतने अलग अलग विकल्प, क्योंकि हम एक एक प्रदेश का एक एक विकल्प देख रहे हैं ना। शंका, यहाँ का सबसे अंतिम क्षेत्र किसके सदृश होता है, अभी जो संख्यात प्रतरांगुल इतने बार एक एक प्रदेश मिटा दिया हमने, तो वहां का जो कोई अनुत्कृष्ट वाला क्षेत्र होगा वो अन्य किसी जीव को ऐसा ही सिमिलर हो सकता है क्या, तो उसका समाधान इस शंका के उत्तर में कहते हैं, यह क्षेत्र सामान्योक्त उत्कृष्ट अवगाहन वाले, यानी उत्कृष्ट अवगाहन वाला वो महामत्स्य लेना, वेदना समुद्घात से तिगुने विषकंभ और उच्छेद को प्राप्त होकर एक प्रदेश कम 7.5 राजू तक, डिफरेंस कहाँ किया, वहां मुख में हम एक एक प्रदेश घटाते गए थे, अब वेदना समुद्घात में से एक एक प्रदेश कम कर रहे हैं, 7.5 राजू जो लंबा उसने मारनातिक समुद्घात किया था उसमें एक प्रदेश कम वाला लिया। साढ़े सात राज्यों तक मारणांतिक समुद्घात को करने वाले महामत्स्य के क्षेत्र के सदृश होता है, पहले उस अवगाहना में से एक एक प्रदेश कम किया था, अब मारणांतिक समुद्घात का जो दंड है उसमें से एक एक प्रदेश घटा रहे। फिर से भी महामत्स्य के मुख संबंधी विकल्पों का आश्रय करके प्रदेश कम 7.5 राजू तक, यानी फिर दोबारा वो पहला वाला लेना, एक एक प्रदेश हम घटाते गए थे, मारणांतिक समुद्घात को छुड़ाकर संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण क्षेत्रों के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए, यानी पहले भी क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण अलग अलग विकल्प बताए थे, उसके आगे भी और संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण विकल्प बताएंगे, क्षेत्रों के स्वामी ने अलग अलग क्षेत्र एक एक प्रदेश घटा दिया था हमने मुख में से, यानी दो बार संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण हो गए ना, पहले बार हुआ था तब वो किसके सदृश है, तो मारणांतिक समुद्घात में से एक प्रदेश कम किया था, अब यहाँ दोबारा संख्यात प्रतरांगुल इतने विकल्प हमने क्षेत्रों के देखे अलग अलग, तो कहते यहाँ अंतिम विकल्प किसके सदृश होता है, पहले वाला किसके सदृश होता है तो देखा था मारणांतिक समुद्घात में से एक प्रदेश कम किया था, अब यहाँ वाला किसके सदृश होगा, उसका समाधान इस प्रकार पूछने पर उत्तर देते हैं, वह क्षेत्र ओघोक्त उत्कृष्ट अवगाहना से संयुक्त, अभी वो मुख में से कम प्रदेश वाला नहीं, पूरी अवगाहना वाला, और पूर्व विधि के अनुसार अब यहाँ मारणांतिक में से दो प्रदेश कम करना, यानी वहां तो संख्यात प्रतरांगुल इतने प्रदेश कम हुए और यहाँ मारणांतिक में एक एक प्रदेश घटा रहे, दो प्रदेशों से हीन 7.5 राजू तक मारणांतिक समुद्घात को छोड़ने वाले महामत्स्य के क्षेत्र के सदृश होता है, ये सिमिलैरिटी बताई वहां, यहाँ एक प्रदेश कम हुआ तो वहां कितने उसके साथ सिमिलैरिटी हो जाती है। फिर इस मारणांतिक क्षेत्र के आयाम को अवस्थित करके महामत्स्य के मुख विकल्पों का आश्रय कर संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रों के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए, फिर एक एक प्रदेश घटाना मुख प्रदेश में से और संख्यात प्रतरांगुल और क्षेत्रों के स्वामी अलग अलग बताना, यहाँ सबसे अंतिम विकल्प तीन प्रदेश कम 7.5 राजू तक मारणांतिक समुद्घात को छोड़ने वाले महामत्स्य के क्षेत्र के सदृश होता है, ये हर जगह ये मारणांतिक समुद्घात को छोड़ने वाली बात है, पहले मारणांतिक करके वहां उत्पन्न होने वाला जीव ऐसा लिया था, अभी इसमें क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। हाँ छोड़ने वाला है उसकी बात आएगी अभी, हाँ क्योंकि हमने देखा था ना, एक तो मानांधिक ऐसा होता है वहां उत्पन्न होने के समय पहले वाला दंड उठा लेता है, अब दूसरा ऐसा करेंगे वापस मूल शरीर में जाता है, तो वो छुड़ाने वाला है ना, वहां तक पहुंचा और एक प्रदेश वापस आया, सभी प्रदेश निकलेंगे वहां से, परंतु वो एक 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 प्रदेश घटाने उसको बताएंगे अभी यहाँ पर। इस प्रकार एक एक आकाश प्रदेश की हीनता के क्रम से मानांतिक समुद्घात को छुड़ाकर अनुत्कृष्ट क्षेत्रों के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए। अब ये शंकाकार पूछ रहा है, सातवीं पृथ्वी में, वो पृथ्वी में हुआ है, पृथ्वी में मारणांतिक समुद्घात को करने वाले सब जीवों के मारणांतिक क्षेत्रों का आयाम समान क्यों नहीं होता? ये उसमें से एक एक प्रदेश घटाने की बात कहां पर आई? वो समान होना चाहिए। उस पर समाधान करते हैं, नहीं, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात को करके फिर मूल शरीर में प्रवेश कर मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवन संबंधी मारणांतिक क्षेत्रों के आयामों के अनेक विकल्प रूप होने में कोई विरोध नहीं है। जब वो वापस जाता है तो एक एक प्रदेश की हीनता से हम कह सकते हैं उसको, उसमें अनेक विकल्प होंगे, यानी दो प्रकार से लिए, एक तो वहां मारणांतिक समुद्घात करके रखा है और फिर पहला पाद वो उठा लेता है और सभी प्रदेश वहां से मिटकर वहां चले जाते हैं। अब यहाँ ऐसा लिया कि वापस जाता है, वहां हम कहते हैं टच करके वापस आया और फिर मरण हो गया, वैसे यहाँ पर लिए, दोनों ही प्रकार ले बताए। हाँ, वो पूरा ही ले, पूरा ही कम हो जाएगा, फिर भी उसमें एक एक प्रदेश की हीनता इमेजिन कर सकते ना, जब वो एक ही समय में इतना समेट गया है, परंतु एक एक प्रदेश उसमें समझना, एक समय में वो पूरा मिट गया उसका, फिर भी उसमें एक एक प्रदेश की कम आप इमेजिन कर सकते हैं। शंका, उत्पत्ति क्षेत्र को न पाकर, यानी अभी मारणांतिक समुद्घात के बाद जहां जन्मना है वहां ही न चले जाने के बदले मारणांतिक समुद्घात को करने वाले जीव पलटकर मूल शरीर में प्रविष्ट होते हैं, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, यह परंपरागत उपदेश से जाना जाता है। शंका, सूक्ष्म, अभी उसमें ही जाने के बदले वापस क्यों आया? ये वापस मूल शरीर में क्यों आ रहा है? तो कहते हैं ऐसा परंपरा से उपदेश पाया जाता है। पहले वाला कौन सा लिया? वो पहला उठा लेता है, ऐसा लिया। अब ये दूसरी पद्धति, दूसरा उपदेश क्या है? वापस मूल शरीर में आता है, दोनों पॉसिबिलिटी। हाँ, हम पहले तो ऐसे अकेला यही सोचते थे, दोनों ही पद्धति है। तभी हाँ, पहला ऐसे ही समझते थे। हाँ, दोनों विकल्प हो सकते हैं, यानी वहां पहुंचा जैसे यहाँ से यहाँ जंप मारा और नहीं इस यहाँ से उठा लिया, ऐसा भी हो सकता है, और फिर या फिर वापस मूल में आना और फिर उसी रूट से जाएगा। यानी दोनों ही हो सकते हैं, ये बात आ गई ना इसमें। पीछे हमने पढ़ा था तो उसके बाद हमने वो तो रॉन्ग ही है, अब यहाँ, हाँ अब यहाँ आता है वो तो ऐसा भी परंपरागत उपदेश है, इसलिए यहाँ छुड़ाकर ऐसा छोड़ने वाले की बात है। मारणांतिक समुद्घात करके छोड़ने वाला जीव है और वो मारणांतिक समुद्घात करके मरने वाला जीव लिया था, वहां क्या लिया था? मारणांतिक समुद्घात करके अनंतर समय में वहां उत्पन्न होने वाला जीव लिया था, और यहाँ ले रहे मारणांतिक समुद्घात करके छोड़ने वाला जीव है। फिर दूसरी शंका, सूक्ष्म निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्यों का आश्रय करके स्वामित्व की प्ररूपणा क्यों नहीं की जाती? पहले भी पूछा था ना, वो तो तीन मोड़ लेके भेज दो उसको, और ज्यादा 3.5 राजू आगे चला जाएगा तो उसकी अपेक्षा क्यों नहीं कहते? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि तीव्र वेदना व कषाय से रहित होने के कारण एक साथ पूर्वोक्त महामत्स्य के उत्कृष्ट मारणांतिक क्षेत्र की अपेक्षा अनेक राजू प्रमाण क्षेत्र प्रदेशों से हीन, यानी वो भले लंबा उत्पन्न होता है परंतु वो तो तिगुना नहीं होता ना, दोनों ओर से तिगुना तिगुना हो जाता है, तो इतना नहीं बढ़ने के कारण वो भले इतना लंबा है फिर भी वो अनेक राज्यों से वो हीन हो जाता है। टोटल क्षेत्रफल अनेक राजू प्रमाण क्षेत्र प्रदेशों से हीन उक्त निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्यों में सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य के उत्कृष्ट क्षेत्र से एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम इत्यादि क्षेत्र विकल्प नहीं पाए जाते। अन्य क्षेत्र विकल्प वहां हो गए परंतु एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम, ऐसे अनुत्कृष्टों में जो अधिक अधिक है वो उसमें नहीं हो गए। सूक्ष्म निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य के उत्कृष्ट मारणांतिक क्षेत्र के समान उत्कृष्ट, सूक्ष्म निगोद में भी, सूक्ष्म निगोद तो बहुत जगह है, उसमें भी अधिक से अधिक दूर वाला लिया, इसलिए उत्कृष्ट मारणांतिक समुद्घात के समान सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य के मारणांतिक क्षेत्र को आदि लेकर, अभी कौन सा वाला लिया? सातवीं पृथ्वी वाला। अभी हम अनुत्कृष्ट में संख्यात प्रतरांगुल, संख्यात प्रतरांगुल करके आए और फिर उसकी समानता बताई मारणांतिक का, एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम। अब यहां बता रहे ये उत्कृष्ट अवगाहना वाला जो कुछ है सातवीं पृथ्वी में ही मारणांतिक समुद्घात करने वाला ऐसे जीव, और वो जीव कौन सा? सूक्ष्म निगोद वाला। जब उनमें सदृशता होगी, इतने प्रदेश हमने उसमें से कम किए हैं, तब क्या होगा? उसको आदि लेकर अधस्तन क्षेत्र के विकल्पों को, यानी उसके नीचे के जितने विकल्प होंगे, कौन से जीव लिया? कि जहां सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला और वो निगोद में जाने वाला दोनों का क्षेत्र समान होगा, ऐसी भी पोजीशन आएगी क्योंकि हमने मूल उसमें अवगाहना में कम किया है। उसके बाद वाले जो अनुत्कृष्ट विकल्प है उसके अधस्तन वाले और उसके नीचे वाले जो क्षेत्रों के उत्पन्न विकल्पों को सूक्ष्म निगोद जीवों में और सातवीं पृथ्वी में भी, अभी एक लाइन पूरी छोड़ देना, वो डबल हो गई है और पृथ्वी हुआ है, पृथ्वी करना, पृथ्वी में भी उत्पन्न होने वाले, एक लाइन जंप करो, लेकर अधस्तन क्षेत्र को, तो ऊपर नीचे सेम शब्द है सब, पूरी एक लाइन निकालना। अभी पढ़ू मैं? फिर हमने दो अलग अलग जीव लिए, एक तो सूक्ष्म निगोद में जाने वाला और एक सातवीं पृथ्वी में जाने वाला, दोनों की जब समानता होगी जिस किसी पोजीशन पर, उसके बाद वाले जितने विकल्प है उसको कहें अधस्तन क्षेत्र। तो वहां से लेकर अधस्तन क्षेत्र के विकल्पों को, अब ये जो अधस्तन क्षेत्र के विकल्प है वो सूक्ष्म निगोद में भी घटित हो गए और सातवीं पृथ्वी वाले के भी घटित हो गए, दोनों में हो गए। हाँ। तो विकल्पों को सूक्ष्म निगोद जीवों में और सातवीं पृथ्वी में भी उत्पन्न होने वाले महामत्स्यों का आश्रय करके उत्पन्न कराना चाहिए, यानी वो दोनों जगह घटित हो गए, जो वहां जाने वाला है और ये सातवीं पृथ्वी में। अथवा महामत्स्य को ही एक को आदि लेकर एक अधिक आकाश प्रदेश के क्रम से आगे बढ़ाकर अनुत्कृष्ट क्षेत्रों की प्ररूपणा करना चाहिए। इस प्रकार वेदना समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त महामत्स्य के क्षेत्र तक ले जाना चाहिए। अब कहते अभी ऐसा जब आएगी पोजीशन तो कहते इस क्षेत्र से कौन से महामत्स्य का क्षेत्र सदृश होता है? उसका समाधान, इस शंका का उत्तर कहते हैं वह इस प्रकार है, जो महामत्स्य वेदना समुद्घात के बिना मूल आयाम के साथ 9000 योजन मारणांतिक समुद्घात को करता है, उसका क्षेत्र इसके सदृश है। ये तो मारणांतिक समुद्घात घटाते घटाते कहां तक लाए हो? 9000 योजन तक। अब पूर्व के क्षेत्र को छोड़कर व इसे ग्रहण कर स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए, वह इस प्रकार है। वेदना समुद्घात के बिना वाला लिया,
ये बिना वाला का 9000 योजन कम जो वो वेदना समुद्घात पर है उससे सब।
नहीं 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 नहीं, देखो ये ऊपर क्या किया है, हमने नीचे नीचे के विकल्प देखते 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 बहुत नीचे आए है ना। यहाँ क्या लिखा है 26 पेज पर सेकंड लाइन, इस प्रकार वेदना समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त महामत्स्य के क्षेत्र तक ले जाना चाहिए, वो बढ़ाते हुए बताया उन्होंने। कहां से लिया था वो दोनों जो जो समान है, वो दोनों में प्राप्त होते सूक्ष्म निगोद में भी और सातवीं पृथ्वी के उसमें भी उत्पन्न होने वाले महा अथवा कहते हैं, अथवा की बात कर रहे हैं। अथवा क्या कहते हैं, महामत्स्य को ही एक को आदि लेकर एक अधिक आकाश प्रदेश के क्रम से आगे बढ़ाकर अनुत्कृष्ट क्षेत्रों की प्ररूपणा करना चाहिए, यानी वो बढ़ाते बढ़ाते या हमने पहले कम करते करते देखा था। अब ये सूक्ष्म निगोद वाले की जो पूछी थी ना बात उन्होंने, उसके समान कौन है तो ये वाला बताया, वेदना समुद्घात के बिना वाला 9000 योजन जाने वाला जीव। अब यहां से आगे बताते हैं, नीचे जो लिखा है वह इस प्रकार है सेकंड लाइन में, मुख में एक आकाश प्रदेश से हीन होकर 9000 योजन मारणांतिक समुद्घात को करने वाले महामत्स्य का पहले कहां तक लिया था, कोई आकाश प्रदेश ही नहीं किया था, पूरा अवगाहना वाला लिया था और 9000 योजन उसने मारणांतिक समुद्घात किया था। अब यहाँ पर दूसरा विकल्प लेते हैं, एक प्रदेश कम किया मुख प्रदेश में से और मारणांतिक समुद्घात उतना ही रखा महामत्स्य का, अनंतर अधस्तन अनुत्कृष्ट मारणांतिक क्षेत्र होता है। पहले कहाँ तक लिया था, वेदना समुद्घात बिना वाला लिया और 9000 योजन समुद्घात करने वाला लिया, उसके बाद वाला कौन सा होगा, मुख में एक प्रदेश कम वाला लिया और 9000 योजन मारणांतिक समुद्घात रखा। एक कहीं से कम करना है ना, एक 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 विकल्प अलग अलग बता रहे हैं। इस प्रकार एक एक आकाश प्रदेश को मुख में कम करके, अभी ये सारे विकल्प वेदना समुद्घात के बिना वाले हैं। वो तो हमने घटाते गए ना, हम कहाँ घटाते गए, मुख में से भी घटाते गए थे और फिर मारणांतिक समुद्घात की लंबाई भी घटाते गए थे। वो तो एक बार दो बार तीन बार ऐसे घटाए ना। हाँ तो इतने विकल्प हो गए उसमें असंख्यात, श्रेणी भले लंबी है परंतु उसमें हमने एक एक मारणांतिक समुद्घात में एक एक प्रदेश हीन घटाते गए थे, उतने विकल्प हो गए क्षेत्र के, ऐसे घटाते घटाते कहाँ तक, वहां भी हमने घटाया, अभी वहां वेदना समुद्घात भी तिगुना है फिर उसको भी कम करेंगे, यहाँ बिना वेदना का लिया और 9000 योजन इतना मारणांतिक समुद्घात, वहां तक हमने अलग अलग विकल्प देखे, वो असंख्यात विकल्प होंगे उसमें, और 9000 योजन में तो कोई सातवीं पृथ्वी है ही नहीं है, जहां कहीं उत्पन्न होने वाला है वहां वो सातवीं पृथ्वी को अभी नहीं लिया। अब कहते उसके आगे के विकल्प कैसे हो गए, तो बिना वेदना का मुख में एक प्रदेश कम और समुद्घात उतना ही रखा, ये चौथी लाइन। इस प्रकार एक एक आकाश प्रदेश को मुख में कम करके 9000 योजन मारणांतिक समुद्घात को कराकर संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रों के स्वामित्व की प्ररूपणा करनी चाहिए। ये इतने स्वामित्व अलग अलग हो गए, इतने क्षेत्रों के अलग अलग विकल्प हो गए, ऐसे घटाते घटाते हम वो राज्यों में से नीचे आए। ये इस प्रकार हीन होकर स्थित अंतिम क्षेत्र से, यानी एक संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण हीन होने पर जो कोई पोजीशन आ गई, वहां क्या होगा? अंतिम क्षेत्र से ओघोक्त उत्कृष्ट अवगाहना में एक प्रदेश कम 9000 योजन। जब हमने मुख में से एक एक प्रदेश कम करते 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 संख्यात प्रतरांगुल इतने क्षेत्रों के अलग अलग विकल्प देखे, तो वहां का जो जीव होगा, उस क्षेत्र का स्वामी, और ये दूसरा वाला लिया कैसा कि उसमें कुछ कम नहीं किया उसने, पूरा वो यानी मुख में एक प्रदेश भी नहीं कम किया, परंतु 9000 में से एक प्रदेश कम कर दिया, उसके सदृश होता है। ख्याल है ना? हाँ, क्योंकि वो कितने, उसकी अवगाहना कितनी है, क्योंकि हमने वो तो पहले तो तिगुना देखी थी, अभी तिगुना नहीं है, फिर भी 250 योजन और 500 योजन इतना तो है ना उसका, उतने अवगाहना से तो जा रहा है, तो उसमें इतने विकल्प हो जाएंगे एक एक प्रदेश कम से। तो ये बिना प्रदेश कम किए 9000 योजन में से एक प्रदेश कम करो, उतना सिमिलर होगा, सदृश होगा। अब ये मारणांतिक समुदाय में एक एक प्रदेश कम वाले बताएंगे। हाँ, इस प्रकार एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम इत्यादि क्रम से महामत्स्य के अध्वान में उत्कृष्ट अवगाहना तक शेष क्षेत्रों के भी स्वामित्व की प्ररूपणा जानकर कहना चाहिए। पुनः एक प्रदेश कम उत्कृष्ट अवगाहना वाला महामत्स्य उससे अनंतर अधस्तन अनुत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी होता है। यानी और एक प्रदेश कम वाला लेना, पहले एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम वाला लिया था, अब यहाँ 9000 योजन में से घटाया। हाँ, इस प्रकार एक एक क्षेत्र प्रदेश को निरंतर कम करके, अब ये निरंतर कम करते गए, महामत्स्य की अवगाहना में से कम किया, फिर वो अभी महामत्स्य को छोड़ो, जो कोई उस अवगाहना वाला जीव होगा, प्राणी होगा, उसको पकड़ना, तो पंचेंद्रियों, फिर वो बीच में मनुष्यों के भी नंबर लगेंगे, इंद्रियों के भी नंबर लगेंगे, एक इंद्रियों के भी आएंगे, तो ऐसे एक एक प्रदेश से हीन कहाँ तक आना है? बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। ये कोई जघन्य अवगाहना नहीं है ये बादर, हाँ वो बीच वाला कोई स्टॉप है। जघन्य तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की होती है, फिर सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त अंक होती है, तेज का एक अंक होती है, इस तरह से वो नंबर देखेंगे हम बाद में। अभी कहाँ तक आए हम? हाँ, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर वाला और उसकी भी उत्कृष्ट अवगाहना तक ले जाना चाहिए, फिर उसमें से एक एक प्रदेश कम करके द्विंद्रिय करना, वो दी हुआ दी दोनों गलत है, द्विंद्रिय करना उसको, नहीं द्विदीर्घ बराबर, द्वि इंद्रिय का द्विदीर्घ होता है, वो ब दिख रहा है वो करना, और इंद्री में द को द्र करना, अब क्या कहते हैं? ये बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना, उससे भी कम करते करते कहाँ तक ले जाए? द्विंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त, अपर्याप्त नहीं कहा, पर्याप्त जीव, यानी द्विंद्रिय पर्याप्त कहेंगे हम, उनकी उत्कृष्ट अवगाहना तक ले जाना चाहिए, फिर उसमें से निरंतर एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम इत्यादि क्रम से चतुरिंद्रिय, इंद्रय हुआ चतुरिंद्रिय, निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। देखो पर्याप्तों में उल्टा क्रम देख रहे ना, द्विंद्रिय और फिर चतुरिंद्रिय को आया। हाँ, वो वनस्पति का एक भी लिया उत्कृष्ट अवगाहना उसकी, फिर उसमें से प्रदेश हीनादि के क्रम से तीन्द्रिय निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। फिर उसमें से एक एक प्रदेश हीनादि के क्रम से त्रिइंद्रिय, वो बिंदी भी लगाई और इंद्रिय भी किया, तीन्द्रिय निवृत्ति पर्याप्त की। अब ये उत्कृष्ट अवगाहना नहीं लिखी, अजघन्य अनुत्कृष्ट एक घनांगुल मात्र अवगाहना के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। यानी अभी एक घनांगुल इतनी अवगाहना तक आ गए हम, हमने महामत्स्य की वो कितने ही 12.5 करोड़ घन योजन देखा था, उसमें से कम करते 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 एक एक प्रदेश एक घनांगुल तक आ गए। इस प्रकार निरंतर क्रम से एक एक प्रदेश हीन करके सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। मिनिमम पॉसिबल अवगाहना, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की भी जघन्य, उसमें भी वेरिएशन है बहुत सारा। इस प्रकार असंख्यात श्रेणी मात्र कितने हैं, विकल्प कितने हो गए, असंख्यात श्रेणी मात्र अनुत्कृष्ट क्षेत्र संबंधी विकल्पों के स्वामित्व की प्ररूपना की गई है। इतने अनुत्कृष्ट स्वामी हो गए अलग अलग, एक एक प्रदेश के कम होते होते। अब इन क्षेत्र विकल्पों के जो स्वामी हैं, उनकी प्ररूपना करते समय वहां 6 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। यहां भी द्वार के बदले द्वार हुआ है। प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणी, अवहार, भागाभाग और अल्प बहुत्व, ब्रैकेट पूर्ण करना और फुल स्टॉप तो है उसको बराबर करना। उनमें प्ररूपणा अनुयोग द्वार को कहते हैं। वह इस प्रकार है, उत्कृष्ट स्थान में जीव है, इस प्रकार जघन्य स्थान तक ले जाना चाहिए। प्ररूपणा समाप्त हुई उत्कृष्ट स्थान से, और वो भी मानाती समुदात वाला देखा, उसमें भी कैसे कैसे कम करने की बोले हमने, और एक 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 प्रदेश इन तक सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त तक के जघन्य अवगाहना तक आ गए। तो हर एक स्थान में जीव है ऐसी बात बताई, उसके स्वामी हैं। उत्कृष्ट स्थान में जीव कितने हैं, तो कहते वे वहां असंख्यात हैं। उत्कृष्ट स्थान में भी असंख्यात जीव है। इस प्रकार त्रसकायकों के योग्य क्षेत्र विकल्पों में असंख्यात जीव है ऐसा कहना चाहिए। स्थावर कायिकों के योग्य क्षेत्र विकल्पों में भी असंख्यात लोक प्रमाण जीव है। विशेष इतना है कि वनस्पति कायिक योग्य क्षेत्र विकल्पों में अनंत जीव है। ऐसा क्यों? हाँ, निगोद है ना वनस्पति कायिक, निगोद वनस्पति कायिक है, तो उनमें जो क्षेत्र विकल्प पॉसिबल है उसमें तो अनंत जीव है। हाँ, अन्य स्थावरों की अपेक्षा वनस्पतिकों के अलग निकाल कर अन्य में असंख्यात असंख्यात जीव होते हैं। इस प्रकार प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। श्रेणी और अवहार की प्ररूपणा नहीं की जा सकती क्योंकि उनका उपदेश प्राप्त नहीं है। विशेष इतना है कि एकेंद्रीय जीवों में, वो जवों में दिखता है, जी बराबर है क्या, जघन्य स्थान संबंधी जीवों की अपेक्षा द्वितीय स्थान संबंधी जीव क्या कहते हैं, श्रेणी अवहार तो नहीं पॉसिबल, क्या है, तो एकेंद्रीय जीवों में जघन्य स्थान संबंधी जीवों की अपेक्षा द्वितीय स्थान संबंधी जीव अंतर्मूर्त प्रतिभाग से विशेष अधिक अथवा विशेषहीन है। यानी वहां उस स्थान में कितने जीव है, उनका प्रमाण कितना है, उसकी बात बताए। उत्कृष्ट स्थान के जीव सब स्थान संबंधी जीवों के कितने विभाग प्रमाण है, वे उसके अनंत विभाग प्रमाण है, क्योंकि वो अन्य में तो निगोद है ना, तो अनंत है, और यहाँ तो संख्या असंख्यात है, तो उसके अनंत विभाग है। जगन्य स्थान में जीव सब स्थानों संबंधी जीवों के कितने विभाग प्रमाण है, वे उनके असंख्यात विभाग प्रमाण है। टोटल अनंत है, और उसमें से जगन्य स्थान में कितने हैं, जगन्य की बात है ना, क्योंकि सभी निगोद जगन्य में नहीं होंगे, निगोदों के भी जगन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक के अनेक विकल्प है, असंख्यात विकल्प है, और उसमें बादर निगोद की भी और बात निकालेंगे तो उसके भी और अपने अपने अलग हो गए। इसलिए सभी जीव वो जगन्य लब्धि पर्याप्त अवस्था में नहीं है, सूक्ष्म उसमें भी मिनिमम अवगाहना वाले नहीं है, अधिक अवगाहना वाले हो गए ना, और जगन्य में भी वो हो गए वो, इसलिए जगन्य वे जो अनंत है वो अन्य जीवों के असंख्यात विभाग हैं। अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण हैं, वे उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इस प्रकार भागाभाग प्ररूपना समाप्त हुई। उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे थोड़े हैं, अभी अल्पभूत बता रहे हैं, उनसे जगन्य स्थान में वे अनंत गुणे हैं, वहां तो निगोद है ना पूरे, और उनसे अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव असंख्यात गुणे हैं, है तो अनंत परंतु जगन्य की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। जगन्य अनंत है और उससे असंख्यात गुणे हैं, वो भी अनंत है परंतु जगन्य के साथ कंपेयर करेंगे तो वो असंख्यात गुणा है। शंका, गुणकार क्या है? गुणकार अंगुल का असंख्यातवा भाग है। उनसे अजगन्य स्थान में जीव विशेष अधिक है। अजगन्य ने भी जगन्य को छोड़ दिया, अनुत्कृष्ट स्थान में जीव उनसे विशेष अधिक है, यानी जगन्य को पकड़ना और उत्कृष्ट को छोड़ना, वो सारे अनुत्कृष्ट होंगे। उनसे सब स्थानों में जीव विशेष अधिक है, अथवा अल्प बहुत्व तीन प्रकार है। ये अल्प बहुत्व देखा हमने, ये दूसरी पद्धति से अब बता रहे हैं, जगन्य उत्कृष्ट और अजगन्य अनुत्कृष्ट, यानी मध्यम के बदले अजगन्य अनुत्कृष्ट कहा उन्होंने। उनमें जगन्य अल्पभूत्व प्रकृत है। जगन्य स्थान में जीव सबसे स्तोक है, उनसे अजगन्य स्थान में जीव असंख्यात गुणे हैं। ये जगन्य में हो गया अल्पभूत्व। उत्कृष्ट अल्प बहुत्व प्रकृत है। अब उत्कृष्टों में अल्प बहुत्व बताते हैं। उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे छोड़े हैं और अनुत्कृष्ट स्थान में जीव उनसे अनंत गुणे हैं। जो उत्कृष्ट नहीं वो सब अनुत्कृष्ट हो गए। अब मध्यम में कहेंगे, अजगन्य अनुत्कृष्ट अल्प बहुत्व प्रकृत है। उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे स्तोक है, जगन्य स्थान में जीव उनसे अनंत गुणे हैं, और अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव उनसे असंख्यात गुणे हैं। उनसे अजगन्य स्थान में जीव विशेष अधिक है, उनसे अनुत्कृष्ट स्थान में जीव विशेष अधिक है, उनसे सब जीवों में स्थानों में जीव विशेष अधिक है। वही बात स्टार्टिंग थोड़ी अलग पद्धति से करके यहाँ बताई है। एक ख्याल में ना कितने विकल्प हमने देखे, उत्कृष्ट शुरू वहां से शुरू करके एक 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 प्रदेश घटाते हुए जघन्य तक आ गए हम। बीच में जो जहां पॉसिबल है मानांतिक समुदाय जो कुछ है वो सब उसमें समझ लेना। अभी जीव इतने अनंत अलग अलग है, यहाँ कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ तक वो मानांतिक समुदाय कर सकते हैं, एक केंद्रीय से पंचेंद्रीय तक, तो क्षेत्रों के इतने सारे जो कितने हमने देखे थे, असंख्यात श्रेणी प्रमाण विकल्प अलग अलग है क्षेत्रों के। एवं दंशनावरणीय मोहनीय अंतरायणम, एक क्षेत्रों के विकल्प चल रहे हो, इसी प्रकार दर्शनावरणीय मोहनीय और अंतराय कर्म के भी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट वेदना क्षेत्रों की प्ररूपना करना चाहिए। जैसे ज्ञानावरणीय के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्रों की प्ररूपना की गई है, वैसे ही इन तीन घाती कर्मों के उक्त क्षेत्रों की प्ररूपना करना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है। जीव जब इतना उसका क्षेत्र हो जाता है तो सभी कर्म उतने फैलते हैं, तो क्या वेदनी आयु नाम गोत्र नहीं फैलेंगे? हाँ, तो उसको क्यों छोड़ा? हाँ बोलो देवेंद्र भाई, वेदनी आयु नाम गोत्र को क्यों छोड़ा? क्योंकि हम तीन चार ही लिए ना, ज्ञानारण दर्शनार। देखो ये जो उत्कृष्ट क्षेत्र बता रहे हैं, अब जो अघाती का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना होगा जब केवली समुद्घात होगा तब? ख्याल आता है ना, क्योंकि केवली में तो ये नहीं है, तो इनका जो अन्य जीवों में उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट की अपेक्षा। अब जघन्य तो सबकी सेम हो सकेगा नहीं, जघन्य उनका भी वेदनी आयु नाम गोत्र का भी जघन्य कितना है, तो जो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना वाला उतना होगा, परंतु उत्कृष्ट में वेरिएशन है ना, उत्कृष्ट कितना होगा तो लोक पूर्ण समुद्घात वाला पूरा लोक, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिया, उसको अभी अलग से बताएंगे। सामित्तेन उक्कस्य पदे वेदनीयस्य वेदना खित्तदो उक्कस्य कस्य, ये तो किसके है उन्होंने प्रश्न पूछा। स्वामित्व से उत्कृष्ट पद में वेदनीय कर्म की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है? उत्कृष्ट पद में इस निर्देश से जघन्य पद का प्रतिषेध किया गया, यहाँ केवल उत्कृष्ट की बात करना चाहते हैं। वेदनीय कर्म की वेदना इस निर्देश से शेष कर्मों की वेदना का प्रतिषेध किया है, यहाँ ज्ञानावरण आदि की बात नहीं है। पहले तो चार घाती को छोड़ ही देना, क्योंकि यहाँ अघाती के उत्कृष्ट क्षेत्र की बात बता रहे हैं। अघाती में भी वेदनीय को पहले लिया है। ले सकते वेदनीय को कहेंगे, बाकी कहेंगे वो उनके समान है। पहले जैसे ज्ञानावरणी को लिया और फिर तीन उसके समान बता दिए। क्षेत्र का निर्देश करने से द्रव्यादि वेदनाओं का प्रतिषेध किया गया, यहाँ द्रव्य ने संख्या की बात नहीं है, क्षेत्र की बात है, किसके होती है? इससे उक्त वेदना क्या देव के, क्या नारकी के, क्या तिर्यंश के और क्या मनुष्य के होती है, यह पृच्छा की गई है। अब एक इसमें पॉसिबल है उत्कृष्ट क्षेत्र, तो उसको बताते हैं। अन्नदरस्य केवलिस्य केवली समुघादेन समूहदस्य सवोलोगम गदस्य तस्य वेदनीय वेदना खेत्तदो उक्कस्सा। अन्यतर केवली के, जो केवली समुद्घात से समुद्घात को वो उसमें ही सर्वलोक अर्थात लोकपूर्ण अवस्था को प्राप्त है, उनके वेदनीय की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, हो तो है, हुआ है, होती है। अन्यतर पद के निर्देश से अवगाहना विशेषों के और भरतादि क्षेत्र विशेषों के प्रतिषेध का अभाव बतलाया गया है, प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं, प्रतिषेध का अभाव क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ ख्याल में आता है? हाँ, यानी क्या भरतादि क्षेत्र विशेष और अवगाहना विशेष, इसका अर्थ क्या होता है? भरतादि यानी भरत क्षेत्र है, विधेय क्षेत्र, वो भरतादि क्षेत्र विशेष ऐसा पाएंगे, ऐसा कहते हैं, नहीं समझना। हाँ देखो, अभी पद में जब पहले में जो सूत्र में शब्द आते हैं, अश्विन भाई सुनो, सूत्र में जो शब्द आते हैं तो अन्य किसी की प्रतिषेध करने के लिए आते हैं, बराबर है? यहाँ अन्यतर शब्द लिया किसी का प्रतिषेध नहीं करने के लिए, यानी कोई भी केवली, परंतु कैसा केवली? समुद्घात वाला। अब क्या कोई महावीर स्वामी, अभी किसी का नाम नहीं लेगी, पर उनको कोई साढ़े तीन हाथ वाले केवली है और कोई 500 धनुष वाले हैं, तो किसका समुद्घात बड़ा होगा? ख्याल है ना, पूरा लोक जिसने व्यापा है, हम लोक पूरण की बात कर रहे, इसलिए यहाँ किसी का निषेध नहीं कर रहे, प्रतिषेध का अभाव यानी निषेध नहीं करना, यानी यहाँ किसी स्पेशल उसमें कोई कैटेगरी की बात नहीं है, वो भरत क्षेत्र के होंगे केवली या विदेह क्षेत्र के होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्षेत्र का कोई नहीं, अवगाहना के भी प्रतिषेध नहीं है, छोटी अवगाहना वाले केवली है क्या बड़ी अवगाहना वाले केवली है 500 धनुष वाले, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि पूरा ही लोक में फैल रहे प्रदेश, तो मूल शरीर के अवगाहना से कुछ लेना देना नहीं है। अवगाहना विशेष यानी हाँ शरीर का प्रमाण, क्षेत्र विशेष यानी भरत क्षेत्र है, भरतनादिक लिखा है ना, भरत क्षेत्र से वो केवली है या विदेह क्षेत्र के केवली है, कहाँ से भी हो, पूरा लोक ही उन्होंने अभी ये समुद्घात किया है, तो पूरे ही लोक में प्रदेश फैले हैं, मूल शरीर की अवगाहना से कुछ लेना देना नहीं है, तो प्रतिषेध का अभाव बतलाया है, यानी उसकी कोई बात ही नहीं ना, क्योंकि लोक पूर्ण करने वाले अभी ये केवली पद का निर्देश करके छद्मस्थों का प्रतिषेध किया गया है। अब अकेली केवली की बात नहीं, केवली समुद्घात किया हुआ है, केवली समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त इस निर्देश से स्वस्थान केवली का प्रतिषेध किया है। अब ये प्रतिषेध किया ही वाली है, और ऊपर प्रतिषेध का अभाव वाली बात बताई थी, क्योंकि स्वस्थान केवली के तो अवगाहना के प्रमाण उसके प्रदेश हो गए। हाँ, स्वस्थान केवली आप पढ़ो उसमें से। देखो केवली का पद किसके लिए है, केवली ऐसा पद छद्मस्थ नहीं है बताने के लिए, और केवली समुद्घात करने वाले का ये पद किस लिए है, वो स्वस्थान वाले नहीं है बताने के लिए, यानी समुद्घात बिना वाले नहीं है ये बताने के लिए, एक एक शब्द क्यों डाला है उसकी बात है ना। सर्वलोक को प्राप्त, अभी केवली समुद्घात भी दंड प्रतर कपाट वो कपाट प्रतर ऐसे तीन है, और ये चौथा है लोक पूर्ण है, तो कहते सर्वलोक को प्राप्त इस निर्देश से दंड कपाट और प्रतर समुद्घात को प्राप्त हुए केवलियों का प्रतिषेध किया है, यानी अन्य नहीं है यही है ये बात बताने के लिए। सर्वलोक पूर्ण समुद्घात में रहने वाले केवली के उत्कृष्ट वेदनीय वेदना होती है, यह उसका अभिप्राय है। यहां पर उपसंहार सुगम है, ये ख्याल में आया प्रेरणा बेन मंदा बेन, बराबर पूरा ही लोक व्यापा है ना, तो ये वेदनी की उत्कृष्ट वेदना होगी क्षेत्र की अपेक्षा। अब कहते तव वदिरित्ता अनुकस्स, उत्कृष्ट क्षेत्र वेदना से भिन्न क्षेत्र वेदना अनुत्कृष्ट होगी, वो अनुत्कृष्ट किसके होगी, अभी एक एक प्रदेश ने एक समय में एक है वो, दूसरे समय में कहाँ तक होता है, प्रतर तक आता है, प्रतर होता है, प्रतर होता है ना, हाँ तो प्रतर क्या है, लोग वात वाले को छोड़कर है, तो वही अनुत्कृष्ट में सबसे मैक्सिमम वाला होगा, क्योंकि उसमें एक एक प्रदेश से कम कोई समुद्घात नहीं होता है। यहाँ पढ़ते देखते हैं, उत्कृष्ट क्षेत्र वेदना से भिन्न क्षेत्र वेदना अनुत्कृष्ट है, इस उत्कृष्ट क्षेत्र वेदना से भिन्न क्षेत्र वेदना अनुत्कृष्ट होती है, अनुत्कृष्ट क्षेत्र वेदना विकल्पों में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्टों में मैक्सिमम कौन सी है, उस क्षेत्र वेदना के स्वामी प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली है। हाँ, क्योंकि अनुत्कृष्ट क्षेत्रों में इससे और कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है, ख्याल है ना, उसे एक एक दो दो प्रदेश का विकल्प वहां नहीं है, उत्कृष्ट है वो लोक पूरण वाले, अनुत्कृष्टों में मैक्सिमम कौन से है, तो प्रतर वाले, उसके बाद किसका नंबर आएगा, हाँ तो कपाट कौन सा कपाट होगा। हाँ, नॉर्थ साउथ में जिन्होंने स्प्रेड किया है, स्प्रेड किया है, और फेस कहाँ है, पूर्वाभिमुख हो गए वो, है ना, और उसमें भी हाँ पद्मासन वाले, तो उसमें ये डिफरेंस होगा। यानी लोक पुराण में तो एक ही विकल्प जो उत्कृष्ट है, अनुत्कृष्टों में वो प्रतर वाला है। अब कपाट में डिफरेंस होगा, उसको पढ़ेंगे हम, देखो और कोई बड़ा नहीं। तीसरी लाइन, यह क्षेत्र उत्कृष्ट क्षेत्र की अपेक्षा विशेष हीन है। विशेष हीन में किसको हीन करना है? पूरे वात वलयों के क्षेत्रफल को, क्योंकि इस क्षेत्र में जीव के प्रदेश वात वलयों के भीतर नहीं रहते। वो यह एक्स्ट्रा हुआ है, वहां वलययों के हुआ है, वलयों के भीतर नहीं रहते। ये कौन से? बाहर वाले वात वलय हो। चहुं ओर है ना लोकाकाश में वो। अब सबसे बड़ी अवगाहना, इसके बाद वाला विकल्प, सबसे बड़ी अवगाहना वाला, वहां भी अवगाहना क्यों लेना? अभी पांच सौ धनुष वाला बैठे होंगे और कोई हमारे साइज वाले बैठे होंगे, तो जितने शरीर की अवगाहना है उतने उतने में ऐसे एंट्री ऐसा स्प्रेड होगी ना आगे पीछे, और आड़े तो पूरे लोकाकाश के अंत तक, परंतु ऐसी अवगाहना बढ़ेगी। 500 धनुष वाले हैं तो ऐसा ज्यादा बढ़ेगा उनका आकार। हाँ। तो कहते हैं बड़ी अवगाहना द्वारा, ये बड़ी अवगाहना वाला कपाट समुद्घात को प्राप्त केवली तदनंतर अनुत्कृष्ट क्षेत्र स्थान के स्वामी है। विशेष इतना है कि पूर्व के अनुत्कृष्ट क्षेत्र से द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात गुणाहीन है। ये पहले वाला कौन सा था? प्रतर वाला, और ये वाला असंख्यात गुणाहीन, क्योंकि वो प्रतर यानी वो पूरा ये वात वाले छोड़कर पूरा आगे पीछे सब जगह स्प्रेड था। अब वो हॉरिजॉन्टली लोकाकाशी अंत तक गया है, कितना ही क्षेत्र नहीं उसने टच किया है, तो ये असंख्यात गुणाहीन है। क्योंकि संख्या सुचंगुल बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण कपाट क्षेत्र की अपेक्षा मंथ क्षेत्र असंख्यात गुणा पाया जाता है। ये मंथ क्षेत्र क्या है? प्रतर को मंथ कहते हैं, मंथ समुद्घात। प्रतर क्षेत्र कहो तो ही चलेगा, यानी प्रतर समुद्घात का क्षेत्र। असंख्यात गुणा पाया जाता है, ये ख्याल में है ना? कपाट की अपेक्षा से प्रतर का जो क्षेत्र है वो असंख्यात गुणा है। एक प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कंभ युक्त अवगाहना से कपाट समुद्घात को प्राप्त केवली तृतीय क्षेत्र के स्वामी हैं। क्या कहते हैं? अभी विष्कंभ, अभी हाइट में से जो कुछ है वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 14 राजो तो ऊपर से नीचे तक तो स्प्रेड हुए हैं, अभी वात वाले उनको छोड़कर 14 राजो। डिफरेंस कहाँ है? आगे पीछे जितना होगा उतना। तो बड़ी अवगाहना वाले हैं तो उनका विष्कंभ बढ़ेगा ना, विष्कंभ कहेंगे उसको। एक तो हाइट और एक विष्कंभ, तो विष्कंभ जितना बड़ा है उतना उनका क्षेत्र बड़ा होगा। अब विष्कंभ में एक प्रदेश कम लिया तो एक प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कंभ युक्त अवगाहना से कपाट समुद्घात को प्राप्त केवली तृतीय क्षेत्र के स्वामी है। वहां इन्होंने पूर्वाभिमुख नहीं लिखा है, परंतु ये सब पूर्वाभिमुख की बात चलेगी, क्योंकि दक्षिणोत्तर सर्वत्र समान है उसकी लोकाकाश, 7 राजू, और हाइट इनकी वात वलयों को छोड़कर अभी दोनों ही जगह वात वलयों को छोड़ा है, तो 14 राजू और 7 राजू इस तरह से फैला हुआ है। जितना विष्कंभ बड़ा उतना क्षेत्र ज्यादा, विष्कंभ में से एक 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 प्रदेश घटा रहे उतने वो सारे क्षेत्रों के विकल्प हो गए अलग अलग, अनुत्कृष्टों के विकल्प चल रहे ना, तीन डायमेंशंस में से एक एक प्रदेश यहाँ से घट रहा है, क्योंकि हाइट और जो विड्थ है यानी पूरा ऐसा 7 राज्य और ऐसा हाइट उसकी 14 राज्य, वो तो उतनी ही रहने वाली है। विष्कंभ में एक एक प्रदेश घटाएंगे, तो एक प्रदेश कम उत्कृष्ट अवगाहना वाला जो है विषकंभ वाला वो तीसरा विकल्प होगा, तृतीय क्षेत्र। विशेष इतना है कि द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र की अपेक्षा तृतीय क्षेत्र विशेषहीन है, क्योंकि इसमें पूर्व के क्षेत्र की अपेक्षा दो जगत प्रतर मात्र क्षेत्र की हानि देखी जाती है। देखो क्या है, एक प्रदेश कम हुआ ना, अभी केवली के प्रदेश कैसे फैले हैं, पूर्वाभिमुख है, अभी पूर्व की अभी अपना लोकाकाश का हमेशा का पिक्चर छोड़ दीजिए, तो अभी केवली के प्रदेश कैसे स्प्रेड है, 7 राजू और 14 राजू है ना, और विषकंभ में जैसे हमारा बुक है इस तरह से उसकी फिगर आप समझना। तो अभी एक प्रदेश कम होगा, तो एक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, विषकंभ में एक प्रदेश यहां से कम हुआ, जो हमारे 500 पेज की बुक है उसमें से केवल एक पेज निकाला, तो उसका क्षेत्रफल 14 × 7, एक प्रतर कितना होता है 7 × 7 का। अब इसके हम दो भाग करेंगे, एक प्रदेश में कितना क्षेत्रफल है, 2 जगत प्रतर प्रमाण क्षेत्रफल है, कैसे 7 × 7 का एक जगत प्रतर हुआ और फिर ये 7 × 7 का एक जगत प्रतर हुआ, ऊपर नीचे हम दो करेंगे ना, इसको बांटेंगे तो 2 जगत प्रतर इतना, एक प्रदेश कम हुआ तो जो 2 जगत प्रतर इतना कम हुआ, तो ये विशेषहीन कहा, क्योंकि वो तो असंख्या जगत प्रतर है ना वहां पर, तो यहाँ विषकंभ में कितने प्रदेश हो गए, तो असंख्या प्रदेश हो गए, मिनिमम भी जो कुछ मिनिमम अवगाहना वाला जो जीव है और वो पद्मासन से बैठा है तो वहां तक कम करेंगे, फिर खड़गासन के वाले वहां तक कम कर सकते हैं, तो उतने उतना क्षेत्र इसका कम हो जाएगा, जैसे 500 पेज के बदले अभी हम 20 पेज वाले तक आ जाएंगे, तो उसके वो उसकी विड्थ ही कम होगी ना, बाकी हाइट और ऐसा जो स्प्रेड है वो तो उतना ही रहने वाला है। ये 2 जगत प्रतर, ये अभी पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आया, मैंने भी ऐसे खाली पढ़ लिया था। एक प्रदेश पूरा ही कपाट का एक प्रदेश लेना, कपाट समुद्घात है, उसके डायमेंशंस क्या है, अभी वातवलय को अभी हम गौण करते हैं तो 14 राजू और 7 राजू, और विषकंभ कितना है, जितना उस जीव का जो विषकंभ होगा उतना, हाँ पूरा एक प्रदेश का लेयर निकल गया, 14 राजू बाय 7 राजू का एक लेयर निकला, तो 14 राजू बाय 7 राजू का कितना होता है, 2 प्रतर हुआ ना, 2 जगत प्रतर, 7 बाय 7 का ले लेंगे तो 1 जगत प्रतर, 14 बाय 7 में 2 जगत प्रतर हो गए। हाँ। 2 प्रदेश कम उत्कृष्ट विषकंभ से कपाट को प्राप्त केवली चतुर्थ अनुत्कृष्ट क्षेत्र के स्वामी है। अभी ये अनुत्कृष्ट क्षेत्रों के स्वामी कैसे कैसे गिनेंगे, 1 प्रदेश कम 2 प्रदेश कम 3 प्रदेश कम, इस तरह से। यह भी अव्यवहित पूर्व के क्षेत्र की अपेक्षा 2 जगत प्रतर मात्र से विशेषहीन है, और 2 प्रदेश, हाँ एक प्रदेश कम हुआ तो और 2 जगत प्रतर कम हो गए, प्रति प्रदेश 2-2 जगत प्रतर कम हो जाएंगे। इस प्रकार सांतर क्रम से 3.5 रत्नी उत्सेद युक्त अवगाहना के विषकंभ से हीन, क्या कहते हैं, 525 धनुष उत्छेद युक्त अवगाहना के विषकंभ प्रमाण, मैक्सिमम विषकंभ कितना है, 525 धनुष उत्छेद युक्त अवगाहना, विषकंभ नहीं कहा, जिसका उत्छेद यानी हाइट 525 धनुष है उसका जितना विष्कम्ब होगा वो मैक्सिमम विष्कम्ब, और मिनिमम विष्कम्ब 3.5 रत्नी, रत्नी यानी हाथ, मिनिमम विष्कम्ब किसका होगा? तो 3.5 जिसकी हाइट है, ऐसे उच्छेद वाला, ऐसे हाइट वाले जो अवगाहना है उसकी जो विष्कम्ब है उसमें भी विष्कम्ब में वेरिएशन होगा। हाइट तो सेम है फिर भी वो तो मोटाई में फर्क होता है ना। नहीं, पद्मासन में भी है परंतु हाइट उतनी है फिर भी हम देखते ना 2-4-5-10 प्रदेश इधर उधर तो हो गए कि नहीं हो गए, कितने ही हो गए। सेम हाइट होगा तो कोई बहुत पतला होगा और कोई थोड़ा जाड़ा होगा ना, स्टाउट जिसको कहते हैं, तो उसमें भी प्रदेशों की जो कुछ, तो उसमें भी जो मिनिमम वाला विष्कम्ब से हीन, यानी इतने कितने विकल्प लिए, वो 525 वाले का विष्कम्ब और ये 3.5 वाले का विष्कम्ब, इसमें से एक 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 प्रदेश घटाते जाओ, इतने सारे विकल्प हो गए। 525 में से 3.5 माइनस नहीं करना है, 525 वाले का विष्कम्ब और 3.5 वाले का विष्कम्ब, उसका भी डिफरेंस लेना। अकेले 525 में से ही नहीं किया, देखो अभी इन्वर्टेड डालना इस प्रकार अंतर क्रम से, अभी 3.5 के आगे इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, 3.5 रत्नी उच्छेद युक्त अवगाहना के विष्कम्भ से, ये पूरा इतने से हीन कितने, फिर दोबारा इन्वर्टेड डालो, 525 धनुष उच्छेद युक्त अवगाहना के विष्कम्भ प्रमाण, क्या लाए किसमें से क्या माइनस करना है बोलो देवेंद्र भाई, किसमें से क्या माइनस करना है? हाँ, 525 525 हाइट वाले के अवगाहना वाले का जो विष्कम्ब है उसमें से 3.5 हाइट वाले, 3.5 हाथ हाइट वाले का जो विष्कम्ब है उसको कम करना, अकेले 525 में से 3.5 मत कम करना, विष्कम्ब में से विष्कम्ब कम करना। हाँ, तो इतने प्रमाण कपाट क्षेत्र के विकल्पों तक, ये कपाट क्षेत्रों के इतने विकल्प हो गए, वो भी अभी इन्होंने बताया नहीं है, मैं बताती हूँ आपको, पूर्वाभिमुख की बात चल रही है। उत्तराभिमुख कितने हो गए? उससे आधे हो जाएंगे। देखो उत्तराभिमुख में क्या होता है, अभी हमने कैसा देखा था कपाट, 14 राजू और 7 राजू देखा था, और हाँ वो ऐसी जो है उसकी जो लोकाकाश हमें जो मालूम है ऐसा उसका एक प्रदेश का स्प्रेड होगा, और ये जो कुछ ऐसा जो कुछ होगा वो, तो इसको अगर हम इक्वल करेंगे तो 3.5 होगा, यानी इसका कपाट कैसे 3.5×14 होगा, यानी एक जगत प्रतर होगा, वहाँ 2 जगत प्रतर हुआ था, पूर्वाभिमुख है वो एक प्रदेश का क्षेत्रफल 2 जगत प्रतर, और उत्तराभिमुख का एक प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 1 जगत प्रतर है। ये समझ में है ना? तो इतने कपाट क्षेत्र के विकल्पों तक, एक एक प्रदेश से कम इतने विकल्प हो गए, वहां तक क्षेत्र स्वामित्व की प्ररूपना करना चाहिए। फिर इस सर्वजघन्य अंतिम क्षेत्र के सदृश उत्तराभिमुख कपाट क्षेत्र को ग्रहण करके, ये अभी उत्तराभिमुख का नाम आया, यानी अभी तक की जो बातें थी वो पूर्वाभिमुख ही थी, पश्चात क्या कहते, वहां का जो सर्वजघन्य अंतिम क्षेत्र है उसके सदृश उत्तराभिमुख कपाट क्षेत्र को ग्रहण करके अभी 3 डायमेंशन को हमको करना है ना, कितने जगत प्रतर लिए, तो जी नहीं नहीं है कितना उसको काउंट करना ना, क्षेत्रफल है कितना, तो दो जगत पत्र मल्टीप्लाइड बाय जितने प्रदेश होंगे उसके, तो वो घटाते 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 जितने तक आए हैं, तो उसके समान जो उत्तराभिमुख वाले का जो कुछ होगा, इस तरह से लेना। यानी ऐसा हो सकता है ना, वहां जगन्या उगाना वाला और उसके सिमिलर कोई उत्कृष्ट उगाना वाला उत्तराभिमुख लेना, उसमें सिमिलैरिटी हो सकती है। ये ऐसा कंपार्टमेंट नहीं ना लगे इसके समाप्त होने पर उत्तराभिमुख शुरू होता है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके सदृश वाला जो कोई होगा, तो क्या कहा फिर इस सर्वजगन, वहां तो क्षेत्रों के विकल्प बताना है, तो इसमें मिनिमम पॉसिबल के सिमिलर में जो कोई उत्तराभिमुख वाला होगा, उसके जो हायर है वो तो इसके साथ आ ही गए, दोनों में पुनरुक्त हो गए ना क्षेत्र कुछ। अब इसके समान वाला कोई उत्तराभिमुख है उसको लेना भी। तो कहते हैं इस सर्वजगन्य अंतिम क्षेत्र के सदृश उत्तराभिमुख कपाल क्षेत्र को ग्रहण करके पश्चात उससे विष्कम्भ में एक एक प्रदेश कम करके, अभी उत्तराभिमुख वाले के विष्कम्भ में और एक एक कम करना, जहां तक आए हैं वहां से आगे बढ़ना है, अभी उस क्षेत्र का स्वामी जो होगा उससे आगे एक एक प्रदेश कम करना विष्कम्भ में से। कपाट समुद्घात को लेकर उत्तराभिमुख केवली के जघन्य कपाट क्षेत्र को प्राप्त होने तक क्षेत्र विकल्पों के स्वामित्व की प्ररूपना करना चाहिए। उनमें भी वो 3.5 हाथ वाले मिनिमम विष्कम्भ वाले ऐसे लेना, और उसमें भी फिर वो खड़गासन वाले ले लेंगे बाद में, तो वो मिनिमम पॉसिबल जो है वहां तक ले लेना। यहां तक समझे ना। पुनः अब ये उतरते उतरते हमने वो लोक पूरण वाले देखे, प्रतर वाले देखे, ये तो दो ही एक एक ही विकल्प है उसका। उसके बाद कपाट में मैक्सिमम से लेकर अभी मिनिमम तक देखे, उसके बाद वाला कौन होगा अनुत्कृष्टों में, वो महामत्स्य होगा। पुनः तीन विग्रह कांडकों द्वारा सातवी पृथ्वी में मानातिक समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त महामत्स्य तदनंतर अधसन अनुत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी है, क्योंकि उक्त जघन्य कपाट क्षेत्र से हीन और दूसरा अनुत्कृष्ट क्षेत्र पाया नहीं जाता। विशेष इतना है कि जघन्य कपाट क्षेत्र से महामत्स्य का उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात गुणा हीन है, असंख्यात वा भाग है उसका। अब यहां से आगे पूर्वोक्त घाती कर्मों के विधान से उपरिम क्षेत्र विकल्पों की प्ररूपणा करना चाहिए। दंड कितना है हमने देखा ना, 12 अंगुलियां जो कुछ, 36 अंगुलियां जो कुछ है, और वो 14 राजू स्प्रेड होता है, और ये महामत्स्य की अवगाहना बहुत ज्यादा है, और वो 7.5 राजू चला जाता है, तो उसकी वो बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ क्या लिखा है देखो, दंड केवली के संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्र स्थान चूंकि महामत्स्य के क्षेत्र के भीतर आ जाते हैं, आई ना बात, यानी महामत्स्य के क्षेत्र से भी वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि संख्यात प्रतरांगुल है वो मनुष्य की अवगाहना अधिक से अधिक, और वो तो कितने योजनों में है, घन योजनों में है ना वो तो। अब विदाउट वेदना समुद्घात भी 12.5 करोड़ घन योजन हो जाते हैं, और वो 7.5 राजू वो फैल जाता है, तो ये कहाँ, ये 14 राजू संख्यात प्रतरांगुल फैलेंगे तो कुछ नहीं होगा उसमें, उसके सामने कुछ नहीं है। तो इसलिए कहते दंडगत केवली के संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्र स्थान चूंकि महामत्स्य के क्षेत्र के भीतर आ जाते हैं, अतः उनकी पृथक प्ररूपणा नहीं की है, वो पृथक करना बराबर पृथक हुआ है। दंड समुद्घात को करने वाले सभी केवली शरीर से तिगुणे बाहल्य से उक्त समुद्घात को नहीं करते, क्योंकि उनके वेदना का अभाव है। वहां तो उसके वेदना समुद्घात में और वो तिगुणा बढ़ता है, और ये तो वेदना का कोई सवाल ही नहीं है, केवली को वेदना नहीं होती है। एक प्रदेश का एक जगत प्रतर होगा, 3.5 × 14, उसके बदले 7 × 7 करो ना तो एक जगत प्रतर हो जाता है। शरीर तो किसी का नहीं फैलता है, आत्मा के प्रदेश 14 राजो फैलते ना ऊपर से नीचे तक, वो तिगुना, वो तो मूल शरीर से तिगुना फैल के फिर स्प्रेड होता है। वेदना मारणांतिक, वेदना और मारणांतिक दोनों है उसके महामत्स्य के। नहीं, समुद्रघात में तो मूल जितना शरीर की अवगाहना है पहले उतने में दंड होगा और फिर बाद में उतने में कपाट होगा और फिर प्रतर में तो लोकाकाश के आगे पीछे वहां तक फैलेगा। शंका, तो फिर कौन से केवली शरीर से तिगुणे बाहल्य से दंड समुद्रघात को करते हैं? वहां भी हमने पढ़ा था ना पहले, 12 अंगुल का हो या 36 अंगुल, ऐसा कुछ अलग अलग आती है अवगाहना। उसका समाधान, पल्यंक आसन से स्थित केवली उक्त प्रकार से दंड समुद्रघात को करते हैं। पद्मासन वालों की अपेक्षा खड़गासन की अपेक्षा पल्यंकासन यानी पद्मासन वाले तिगुणे हो जाते हैं उसके। जब ऐसे हम बैठे तो ऐसा बैठेंगे तो वो तो तिगुणा हो जाता है। फिर उस मैक्सिमम जितनी है अवगाहना उतने में वो दंड हो जाता है। ख्याल है तिगुणा क्यों किसके होता है? हाँ, ये 12 अंगुल और 36 अंगुल आप कहेंगे वो 525 धनुष में कैसे समझना 3.5 हाथ? तो 12 अंगुल और 36 अंगुल कैसे घटित होगा? वहां आत्मांगुल समझना, उसके अपने अपने अंगुल है ना, उनके अंगुलों से नापेंगे हम। हाँ, तो 12 अंगुल और 36 अंगुल होगा। 32 पृष्ठ। इन क्षेत्रों के स्वामी जीवों की प्ररूपणा करने में 6 अनुयोग द्वार है। उनमें प्ररूपणा अनुयोग द्वार की अपेक्षा वेदनीय कर्म के सब क्षेत्र विकल्पों में जीव है, प्ररूपणा समाप्त हुई। यानी सभी जो अलग अलग विकल्प है उसमें जीव है बस। अब कितने हैं कहाँ पर उसकी बात करेंगे। उत्कृष्ट स्थान में जीव कितने हैं? संख्यात है। ज्ञानावरणी में कितने देखे थे उत्कृष्ट स्थान में? असंख्यात देखे थे। अब यहाँ संख्यात क्यों? हाँ, समुद्रघात केवली मैक्सिमम कितने हो गए? 20 और 20-40 हो गए ना किसी गिवन एट ए टाइम, तो संख्यात है। इस प्रकार कपाट समुद्रघात गत केवली के जघन्य क्षेत्र विकल्प तक ले जाना चाहिए। वे सभी जो है वो संख्यात ही हो गए। आगे महामत्स्य के उत्कृष्ट क्षेत्र से लेकर त्रसयोग्य क्षेत्रों में असंख्यात जीव है, ये हमने देखे थे पहले भी। यहाँ वेदनीय में भी वही होगी। वनस्पति कायिक योग्य क्षेत्रों में अनंत जीव है। इस प्रकार प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। क्षेत्र श्रेणी प्ररूपणा बतलाना शक्य नहीं है क्योंकि उसके विषय में प्रवाह रूप से प्राप्त हुए परंपरागत उपदेश का अभाव है। अब अवहार की प्ररूपणा करते, अवहार ने उसका जो भागाकार। उत्कृष्ट स्थान में रहने वाले जीवों के प्रमाण से सब जीव कितने काल से अपहृत होते हैं? वे प्रमाण से अनंत काल में अपहृत होते हैं क्योंकि टोटल जीवों को केवली जो संख्या थे उसका भाग देंगे तो अनंत आएगी संख्या, तो अनंत काल से अपहृत होते कहते हैं। इस प्रकार त्रस कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक और वायु कायिक योग्य स्थानों तक ले जाना चाहिए। सूक्ष्म बादर वनस्पति कायिक योग्य स्थानों संबंधी जीवों के प्रमाण से सब जीव कितने काल से अपहृत होते हैं? उक्त प्रमाण से वे असंख्यात काल में अपहृत होते हैं। यानी सब टोटल जीवों की संख्या को वनस्पति कायिकों की संख्या से भाग देंगे तो असंख्यात आएगा। दोनों ही संख्या अनंत है परंतु उनका आपस में भागार होगा तो असंख्यात संख्या आएगी, तो असंख्यात काल से अपहृत होते, ये कहने की पद्धति है उसकी। भागा भाग की प्ररूपणा करते हैं। उत्कृष्ट स्थान में रहने वाले जीव सब स्थानों संबंधी जीवों के कितने विभाग प्रमाण हैं, वो आसान है ना, अनंत विभाग प्रमाण है, वे उनके अनंत विभाग प्रमाण है। जघन्य स्थान में रहने वाले जीव सब स्थानों संबंधी जीवों के कितने विभाग में हैं, भाग प्रमाण है, वे उनके असंख्यात विभाग प्रमाण है। अजघन्य उत्कृष्ट स्थान में रहने वाले जीव सब स्थानों संबंधी जीवों के कितने विभाग प्रमाण है, वे उनके संख्यात बहुभाग प्रमाण है। हाँ, असंख्यात चाहिए ना, असंख्यात बहुभाग। ऊपर असंख्यात जब आगा है, असंख्यात बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था ना असंख्यात बहुभाग। जघन्य में तो अनंत है ना, और बीच में तो उससे भी बहुत असंख्यात गुणे हैं, तो असंख्यात बहुभाग हो जाएगी, भागा भाग प्ररूपना समाप्त हुई। अल्प बहुत्व कहते हैं, उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे स्तोक है, उनसे जघन्य स्थान में जीव अनंत गुणे हैं, उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थान में जीव असंख्यात गुणे हैं, उनसे अजघन्य स्थान में जीव विशेष अधिक है, उनसे अनुत्कृष्ट करना, अनुत्कृष्ट हुआ, अनुत्कृष्ट स्थान में जीव विशेष अधिक है। अनुत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट को छोड़कर बाकी को ले लेना, उनसे सब स्थानों में जीव विशेष अधिक है। ये सब टोटल जीवों की बात है। अब आगे का सूत्र, एवं आवण आमा गोदानम, वेदनी की जो बात की थी, आयु नाम और गोत्र के बारे में वही बात है। इसी प्रकार आयु नाम व गोत्र कर्म के उत्कृष्ट एवं अनुत्कृष्ट वेदना क्षेत्रों की प्ररूपना करनी चाहिए। जिस प्रकार वेदनीय कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्र की प्ररूपना की गई है, उसी प्रकार आयु नाम व गोत्र कर्म के भी उक्त क्षेत्रों की प्ररूपना करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्षेत्र प्ररूपना समाप्त हुई, यानी अघाती कर्मों में लागू होगा। अब मैं पूछूंगी कौन से आयु कर्म में इतनी उत्कृष्ट वेदना होगी मनुष्य। अब 19 नंबर का सूत्र, सामित्तेन जहन्न पदे नानावर्णीय वेदना खेत्तदो जहन्निया कस्स। अभी तक हमने उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टों के विकल्प देखे थे, अब जघन्य की बात। स्वामित्व से जघन्य पद में ज्ञानावरणीय की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य किसके होती है? जघन्य पद का निर्देश शेष पदों के प्रतिषेध के लिए किया है। शेष पद यानी अजघन्य, अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट, यहाँ केवल जघन्य की बात करेंगे। ज्ञानावर्णीय का निर्देश शेष कर्मों का प्रतिषेध करने वाला है। अब इस सूत्र में तो प्रतिषेध किया है, बाद में कहेंगे बाकी कर्मों की भी ऐसे ही होता है जघन्य। हाँ, क्योंकि जघन्य में तो कोई डिफरेंस नहीं, उत्कृष्ट में डिफरेंस था, इसलिए घाती और अघाती को अलग निकाला। जघन्य अवगाना वाले में तो आठों कर्मों की, तो उसका क्षेत्र तो उतना ही रहेगा। क्षेत्र का निर्देश द्रव्यादिक का प्रतिषेध करता है, किसके होती है? इस निर्देश से, निर्देश हुआ, निर्देश से देव व नारके आदि विषयक पृच्छा प्रकट की गई है। की के ऊपर भी बिंदी लगाई। अब इसके किसके होता है पूछा है, उसका उत्तर बताते। अन्नदरस, पहले भी अन्नदरस शब्द आया था। अन्नदर ने कोई एक, कोई एक का अर्थ क्या होता है, वहां भी कोई एक केवल यानी कोई विशिष्ट क्षेत्र का हो या विशिष्ट अवगाहना वाला, वो बात नहीं थी, इसलिए अन्यतर लिखा। यहाँ भी अन्नदरस सुहमनिगोद जीव लद्ध्य अपजत्तयस्स ती समय आहारयस्स ती समय तब भवत्थस्स जहन्न जोगिस्स सौ जहन्नियाय शरीर ओगाहनाए वट्टमानस तस नाना वर्णीयवेना खेत्तदो जहन्ना। अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव, अभी वो सूक्ष्म निगोद कैसा कैसा होना चाहिए, तो कहते लब्धि अपर्याप्तक, जो कि त्रिसमयवर्ती आहारक है, यानी आहार ग्रहण करते उसको तीन समय हुआ है, तीसरा समय चल रहा है, तीसरा समय आहारक का, नौ कर्म ग्रहण का तीसरा समय, तद्भवस्थ होने के तृतीय समय में वर्तमान है, और उस भव का भी तीसरा समय है, आहारक का भी तीसरा समय और भव का भी तीसरा समय, ये क्या डिनोट करता है, क्या वो रुजुगति से आना आया हुआ है ये बताने के तीसरे समय में। और फिर क्या विशेषता है उसकी, जघन्य योग वाला है और शरीर की सर्वजघन्य अवगाहना में वर्तमान है, क्योंकि सूक्ष्म निगोद में भी अवगाहना की रेंज बहुत सारी है, असंख्यात विकल्प है उसमें, हमें ऐसा जीव लेना है मिनिमम अवगाहना वाला लेना है। उसके ज्ञानावरणी की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य होती है। ये ख्याल में है ना, ये एक एक कंडीशन बता दी उन्होंने, आगे देखते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव अनंत है, उनमें से एक का ग्रहण करने के लिए अन्यतर सूक्ष्म निगोद जीव के ऐसा कहे, यानी कोई एक, ये कोई स्पेसिफिक नहीं बताना है तो अन्यतर कह दे दे। उनमें पर्याप्त का निराकरण करने के लिए अपर्याप्त के ऐसा निर्देश किया गया है, ऐसा कथन किया गया है। शंका, पर्याप्त का निराकरण किस लिए किया जाता है, उसका समाधान, अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से, चूंकि पर्याप्त की जघन्य अवगाहना बहुत पाई जाती है, बहुत यानी वो तो असंख्यात गुणा पाई जाती है, तो बहुत पाई जाती है, अतः उसका निषेध किया गया है। विग्रह गति में चूंकि जघन्य अवगाहना भी पूर्व अवगाहना से के सदृश है, अतः उसका निषेध करने के लिए त्रिसमयवर्ती आहार कैसा कहा है। क्या कहते हैं, ये रुजुगति से नहीं आता तो क्या होता, विग्रह गति में कौन सा आकार रहता है, वो पूर्व शरीर का आकार रहता है, तो अवगाहना तो पूर्व की रहेगी, इसलिए उसका निषेध करने के लिए यहाँ पर रुजुगति वाला यानी त्रिसमयवर्ती आहार कहा। रुजुगति से उत्पन्न हुआ इस बात के ज्ञापनार्थ तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ ऐसा कहा है। शंका, एक दो अथवा तीन भी विग्रह करके उत्पन्न कराकर, तीन विग्रह ने तीन मोड़, षष्ठ समयवर्ती तद्भवस्थ निगोद जीव के जघन्य स्वामीपना क्यों नहीं देते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो तीसरे समयवर्ती होगा तो ठीक है बात, आहारक तीसरा समय ठीक है, परंतु विग्रह गति में तीन समय और बिताने दो ना, तो षष्ठ समयवर्ती हो जाएगा, तो उसको क्यों नहीं लिया। समाधान, नहीं, क्योंकि पांच समयों में असंख्यात गुणित श्रेणी से वृद्धि को प्राप्त हुए एकांत अनुवृद्धि योग से बढ़ने वाले उक्त जीव के बहुत अवगाहना का प्रसंग आता है। क्या कहते हैं, हमने देखा था उपपाद योग जघन्य में जघन्य होता है और उसके बाद एकांत अनुवृद्धि योग चालू हो जाता है और उसमें असंख्यात गुणाक्रम से बढ़ता है, तो असंख्यात गुणाक्रम से योग बढ़ेगा तो उसकी अवगाहना भी अधिक हो जाएगी। शंका, तो कहते ऐसा है तो पहले समय वाला ही क्यों नहीं लेते तो कहते प्रथम समयवर्ती आहारक और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ हुए निगोद जीव के जघन्य क्षेत्र का स्वामीपना क्यों नहीं देते। ख्याल है प्रश्न, पहले तो उसने छठे समय वाली बात है तो वहां का एकांत अनुवृद्धि योग होता है, तो तीसरे समय में भी तो एकांत अनुवृद्धि योग होगा तो पहले ही समय वाले को जघन्य कर दो, ऐसा कहते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि उस समय ने पहले समय आयत चतुरस्र क्षेत्र के आकार से स्थित उक्त जीव में अवगाहना का स्तोकपना बन नहीं सकता। पहले समय में वो आयत चतुरस्र लंबा चौकोन ऐसा हम करेंगे, हाँ ये जो, हाँ ये अभी है वो 14x7 हमने देखा था ना, अभी ये आयत चतुरस्र, ये पहले समय में, हाँ शंका, रुजुगति से उत्पन्न होने के प्रथम समय में आयत चतुरस्र स्वरूप से जीव प्रदेश स्थित रहते हैं, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, वह आचार्य परंपरागत उपदेश से जाना जाता है। शंका, फिर द्वितीय समयवर्ती आहारक और तद्भवस्थ होने के द्वितीय समय में वर्तमान जीव के जघन्य स्वामीपना क्यों नहीं देते हैं? जैसे कि हम ही कोई देने वाले हैं, तो समाधान नहीं, क्योंकि उस समय में भी जीव प्रदेश समचतुरस्र स्वरूप से अवस्थित रहते हैं। अभी ये आयत वाले थे, अभी वो समचतुरस्र स्वरूप हो गए चौकोर, अभी जो कुछ उसके विष्कम्भ होगा क्यूबिकल, जैसे हम क्यूब कहते ना, अभी पहले तो लंबा ऐसा ईट जैसा था, अभी वो क्यूबिकल हो गया, हाँ चौरस। शंका, द्वितीय समय में जीव प्रदेशों का विष्कम्भ से समान आयाम होता है, ये समचतुरस्र का अर्थ है ना क्यूबिकल, विष्कम्भ और आयाम समान हो गया। पहले तो हमने जैसे 14 राजू 7 राजू और कुछ विष्कम्भ किया था, अब तीनों डायमेंशन समान हो गए उसके, यह कहाँ से जाना जाता है? समाधान, वह परम गुरु के उपदेश से जाना जाता है। फिर शंका, तृतीय समयवर्ती आहारक और तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ निगोद जीव के ही जघन्य क्षेत्र का स्वामीपना किस लिए देते हैं? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस समय में चतुरस्र क्षेत्र के चारों ही कोनों को संकुचित करके जीव प्रदेशों का वर्तुल अर्थात गोल आकार से अवस्थान देखा जाता है। ये कोण उसके, अभी ऐसा हम चौकोण कहते हैं तो उसके चार कोण कम होके गोल आकार हो जाता है उसका। उस समय जीव प्रदेश वर्तुल आकार से अवस्थित होते हैं, यह कैसे जाना जाता है? उसका समय, वह इसी सूत्र से जाना जाता है, क्योंकि तीसरे समय में मिनिमम है तो ये गोल हो जाता है। उत्पन्न होने के प्रथम समय में, समय से लेकर जघन्य उपपाद योग और जघन्य एकांत अनुवृद्धि योग से ही तीनों समयों में प्रवृत्त होता है, इस बात को जतलाने के लिए जघन्य योग वाले के ऐसा सूत्र में निर्देश किया है, क्योंकि अधिक योग होगा तो उसके क्षेत्र भी बढ़ेगा उसका। हाँ, तृतीय समय में अजघन्य भी अवगाहने होती है, अतः उनका प्रतिषेध करने के लिए शरीर की सर्वजघन्य अवगाहना में चाहिए, अवगाहन में ठीक है चलेगा, शरीर की सर्वजघन्य अवगाहन में वर्तमान यह कहा गया है। सूत्र में अवगाहन में ही लिखा था, अवगाहना में ना करो उसका। इन विशेषणों से विशेषता को प्राप्त हुए सूक्ष्म निगोद जीव के ज्ञानावरणी के वेदना क्षेत्र से जघन्य होती है। यहाँ उपसंहार कहते हैं, एक उच्छेद घनांगुल को स्थापित करके तत्प्रायोग्य पल्योपम के असंख्यात भाग का भाग देने पर ज्ञानावरणी का जघन्य क्षेत्र होता है। ये सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त की जघन्य अवगाहना कितनी होती है? तो कहते ये उच्छेद घनांगुल के असंख्यात भाग इतनी होती है, तो तत्प्रायोग्य ने उसके यथा योग्य पल्योपम के असंख्यात भाग से भाग देना ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमने देखा था वो तो जघन्य से शुरू करेंगे तो कितने बार आवली का असंख्यात गुणा करेंगे, कितने बार पल्ले का असंख्यात भाग से गुणा करेंगे, तब जाके घनांगुल प्राप्त होगा। तो यहाँ तक ये बात, बाकी हम कल देखेंगे इसके बाद। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। विनोद भाई।